आगे सबक देखिए भाई, वलौ काल अंति तालिकुम मालम उतल्लिक की अंति तालिकुन फही तालिकुन बिहादिहि तत्लीका मानाहु काल दालिक मौसूलम बिही वल कियासु अन यकअल मुजाफ फयकअानि इन कानत मदखूलन बिहा وهو قول زفر رحمه الله لأنه وجد زمان لم يطلقها فيه وإن قل وهو زمان قوله أنت طالق قبل أن يفرغ منها. भाई गुज़श्ता सबक में आपने पढ़ा, साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी से कहता है तुम्हें निस्फ़े तलाक है या सुलुसे तलाक है या तलाक का कोई भी जुज जिक्र करता है तो तलाक तो ऐसी चीज है जिसकी तकसीम नहीं हो सकती, लिहाजा पूरी एक तलाक हो जाएगी। और अगर खावन ने बीवी से कहा कि तुम्हें दो तलाकों के तीन निसफ तलाक है तो दो तलाकों का निसफ है एक तलाक, यह है निसफ, और तीन निसफ कहा तो तीन तलाकें हो जाएंगी। और अगर कहा खावन ने बीवी से कि तुझे एक तलाक के तीन निसफ तलाक है तो एक तलाक का निसफ है आधी तलाक, और आधी तलाक को तीन दफा करें तो यह डेढ़ तलाक बनती है, यानी एक पूरी और एक आधी, और आधी तो हो नहीं सकती लिहाजा वो भी पूरी हो जाएगी और दो तलाकें हो जाएंगी। जबकि बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इस सूरत में भी तीन तलाकें होंगी क्योंकि उसने कहा था एक तलाक के तीन निसफ, और हर निसफ जो है वो अपनी जात के एतबार से पूरी तलाक बन जाएगा तो तीन तलाकें हो जाएंगी। लेकिन मैंने आपको बतलाया कि उलमा फरमाते हैं ज्यादा सही बात यही है कि इस सूरत में दो तलाकें होंगी भाई। उसके बाद फिर मसला यह जिक्र किया था कि अगर कोई खावन अपनी बीवी को तलाक देता है और उसके साथ गाया इब्तिदा और इंतहा को जिक्र करता है कि तुझे तलाक है एक से लेकर दो तक, या तुझे तलाक है एक से लेकर तीन तक, या तुझे तलाक है वो जो एक और दो के बीच में है, या तुझे तलाक है वो जो एक और तीन के बीच में है, तो मैंने बताया था कि इसमें इमाम साहब का जाब्ता यह है कि इन दोनों तलाकों के जो बीच में है वो तलाक वाके होगी और साथ गाया इब्तिदा भी दाखिल होगा। लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब इन दोनों के बीच में कोई तलाक हो, जैसे एक से लेकर तीन तक, खावन ने कहा तुम्हें तलाक है एक से लेकर तीन तक, तो एक और तीन के बीच में दूसरी तलाक है, लेकिन दूसरी तलाक तो हो नहीं सकती जब तक पहली ना हो, लिहाजा गाया इब्तिदा भी आ जाएगा और दरमियान वाली तलाक भी, तो दो तलाकें हो जाएंगी इमाम साहब के नजदीक। और अगर दरमियान में कोई तलाक है ही नहीं, मसलन खावन ने कहा तुम्हें तलाक है एक से लेकर दो तक, तो इस सूरत में फिर इमाम साहब के नजदीक ये जो तलाक होगी वो अंति तालिकुन से होगी, क्योंकि एक और दो के दरमियान तो कुछ है नहीं कि वो तलाक वाके होती, लेकिन पीछे खावन ने अंति तालिकुन का लफ्ज तो कहा है, लिहाजा उससे एक तलाक हो जाएगी। जबकि इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं कि इस सूरत में न गाया इब्तिदा दाखिल होता है और न गाया इंतहा, लिहाजा खावन ने कहा तुझे तलाक है एक से तीन तक, तो एक और तीन के बीच में दूसरी तलाक है तो सिर्फ ये एक तलाक हो जाएगी, और अगर खावन ने कहा तुझे तलाक है एक से लेकर दो तक तो एक और दो तो गाया है ये दाखिल नहीं, और इन दो के बीच में तो कोई तलाक नहीं है, लिहाजा कोई तलाक वाकई नहीं होगी। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि दोनों गाय दाखिल होते हैं, गाय इब्तिदा भी और गाय इंतहा भी, तो जब खावन ने बीवी से कहा कि तुझे तलाक है एक से दो तक तो एक भी दाखिल दो भी दाखिल, तो दो तलाकें हो जाएंगी, और जब खावन ने बीवी से कहा तुझे तलाक है एक से लेकर तीन तक तो एक भी दाखिल तीन भी दाखिल, तो तीन तलाकें हो जाएंगी। और फिर उसके बाद अगर खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन वाहिदतन फी सिनतैनी, यानी फी का लफ्ज लेकर आया, और फी का लफ्ज अरबी जुबान में जर्ब के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिदुन फी सिनतैनी आई वाहिदुन मजरूबुन फी सिनतैनी, तो लिहाजा ये जर्ब के लिए इस्तेमाल होता है, तो इस खामंद ने कहते हैं अगर जर्ब की नीयत की है तो जर्ब से सिर्फ अज्जा बढ़ते हैं अफराद नहीं बढ़ते, लिहाजा एक ही तलाक होगी भाई, एक को जर्ब दी दो में तो इससे एक के अज्जा नहीं बढ़े, एक ही तलाक होगी। तो अगर जर्ब की नीयत करे तब भी एक तलाक, और अगर कोई नीयत नहीं की तब भी एक तलाक। जबकि इमाम जुफर फरमाते कि यहां दो तलाकें होंगी, क्योंकि आम लोगों की आदत क्या है, इसके जरिए जर्ब का इरादा करते हैं। भाई तो जर्ब का इरादा किया जाता है तो एक को दो से जर्ब दी जाए तो दो बनता है, लिहाजा दो तलाकें होंगी। और मैंने बताया इस मसले में फतवा इमाम जुफर रहमहुल्ला के कौल पर है भाई। और अगर इसी के अंदर खावन ने लफ्ज तो जिक्र किया फी और इरादा किया वाओ का, कहा क्या अंतितालिकुन वाहिदतन फी सिनतैनी, और इरादा क्या किया वाहिदतन व सिनतैनी, तो फिर इस सूरत में तीन तलाकें हो जाएंगी। और अगर औरत गैर मदखूल बिहा है तो फिर एक ही तलाक से बायना हो जाएगी, क्योंकि वाहिदतन से एक तलाक हुई और वह सिनतैनी जब तक आया वह औरत बायना हो चुकी थी, तो वो दो तलाकें बाकी लगव चली जाएंगी भाई। और अगर खावन ने कहा मैंने फी का लफ्ज जिक्र किया है लेकिन मैंने मा का इरादा किया है वाहिदतन मा सिनतैनी, तो इस सूरत में भी तीन तलाकें हो जाएंगी, क्योंकि फी बमाने मा के कलाम अरब में इस्तेमाल होता रहता है भाई। और अगर खावन से पूछा गया क्या नीयत की थी और वो कहता है मैंने जरफियत की नीयत की थी वाहिदतन फी सिनतैनी, यानी फी का माबाद जर्फ बनता है, तो सिनतैन जो है इसको मैंने जर्फ बनाया था, तो दो तलाकों को मैंने जर्फ बनाया था एक तलाक के लिए, तो उसमें भी हमारे नजदीक जो पहला अदद है उसी का एतबार होगा, वही तलाक वाकई होगी। इसलिए क्योंकि तलाक जो है वो तो एक सिफत का नाम है, इसका तो अपना अलग कोई वजूद नहीं, ये किसी चीज के लिए जर्फ नहीं बन सकती। और फिर ये मसला आपने पढ़ा था, अगर खामन ने बीवी से कहा कि तुझे यहां से लेकर शाम तक तलाक है, तो इमाम जुफर फरमाते हैं तलाक बाइन वाके होगी, इसलिए क्योंकि उसने तलाक की लंबाई बयान की जिससे कुवत आ गई तलाक के अंदर, और कभी तलाक वो तलाक बाइन होती है क्योंकि वो निकाह को फौरन तोड़ देती है। जबकि हम कहते हैं नहीं, इसने तलाक को छोटा कर दिया। तलाक तो जब दी जाती है वो तो हर जगह होती है, लेकिन इसने सिर्फ शाम तक महदूद कर दिया तो तलाक को छोटा कर दिया, तो लिहाजा इससे तलाक रजई होगी बाइन नहीं होगी। और अगर खावन ने बीवी से कहा कि तुझे मक्का में तलाक है, तो इस सूरत में उसी वक्त तलाक हो जाएगी, इसलिए क्योंकि तलाक जो है वो किसी मकान के साथ मखसूस नहीं हो सकती कि वहां तो औरत मुतल्लका हो और वहां से निकले तो मुतल्लका ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर तलाक को किसी फेल के साथ मुअल्लक किया कि तुझे तलाक है इज़ा दखलती मक्का था, जब तू मक्का में दाखिल हो, तो फिर इस सूरत में मक्का में दाखिल होते वक्त तलाक वाकई हो जाएगी। और उसके बाद फिर जमाने की बात शुरू की कि जब तलाक की निस्बत जमाने की तरफ की जाए, मसलन खावन बीवी से कहता है अंति तालिकुन गदन, और एक सूरत यह है खावन बीवी से कहता है अंति तालिकुन फी गदिन, तो साहिबैन के नजदीक फी को चाहे जिक्र किया जाए या जिक्र न किया जाए, दोनों सूरतों में ये गदन या फी गदिन ये तकाजा करता है कि ये इस्तियाब कर ले तलाक का, ये इस्तियाब कर ले तलाक का, यानी पूरे दिन तलाक वाली हो औरत। और ये इसी सूरत में हो सकता है जब अव्वल जुज में तलाक वाके हो। जबकि इमाम साहब के नजदीक जब फी को जिक्र न किया जाए तो फिर उस वक्त तो मसला अंति तालिकुन गदन कहा है, तो अब ये गदन मंसूब है, यहां फी जिक्र नहीं, ये तो इस्तेआब का तकाजा कर रहा है, लिहाजा अव्वल जुज में तलाक वाके हो जाएगी। लेकिन कहा अंति तालिकुन फी गदिन, तो इस सूरत में तू तलाक वाली है कल के दिन में, तो कल के किसी एक जुज में भी तलाक का पाया जाना काफी है भाई। तो मालूम हुआ फी को जब जिक्र किया जाए तो वो इस्तेआब का तकाजा नहीं करता। हां अलबत्ता इस सूरत में भी पहले जुज में ही तलाक वाके होगी अगर खामन ने कोई नीयत नहीं की, इसलिए क्योंकि हर जुज तकाजा करेगा मेरे अंदर तलाक हो जाए, और जब पहला जुज आया तो बाकी अभी कोई उसका मुकाबिल और दूसरा जुज आया ही नहीं, लिहाजा मुकाबिल मौजूद नहीं, तो लिहाजा पहले ही जुज में तलाक वाके हो जाएगी। लेकिन यह तलाक जरूरत की वजह से वाके हुई पहले जुज में, क्योंकि वो तकाजा कर रहा था। और लेकिन अगर खावन आखिरी जुज का इरादा कर लेता है तो एक तरफ तायीन जरूरी है, जरूरत की वजह से अव्वल जुज में आ रही थी, दूसरी तरफ तायीन कसदी है, यानी जिसका वो इरादे के साथ जिसकी तायीन कर रहा है, तो तायीन कसदी उसका एतबार किया जाएगा और आखिरी जुज में तलाक वाके होगी भाई। और अगर खावन ने अपनी बीवी से कहा अंति तालिकुन अमसी, गुजश्ता कल तुझे तलाक है और हाल यह है कि इनका निकाह आज ही हुआ है, तो फिर इस सूरत में गुजश्ता कल में तो वह तलाक का मालिक ही नहीं था, लिहाजा उसका यह कलाम लग्व चला जाएगा। और मैंने बताया था कि जो अंति तालिकुन जो है यह असल में तो खबर है, असल में तो क्या है, खबर है, लेकिन चूंकि इंशाए तलाक के लिए कोई लफ्ज अरबी जुबान में अलग है ही नहीं, इसलिए शरीयत ने यह खबर वाले लफ्जों को ही इंशाए तलाक का कायम मकाम कर दिया। तवज्जो है, तो ये जितने आकद हम करते हैं इन सब के अंदर जो इजाब और कबूल करते हैं वो सारे दरअसल वो खबर के सीगे होते हैं, लेकिन चूंकि इंशाए आकद के लिए अरबी जुबान में कोई लफ्ज मुकर्रर ही नहीं है तो मजबूरन फिर खबर वाले सीगे इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब खामन ने कहा अंति तालिकुन अमसी, तो गुज़श्ता कल तो वो तलाक का मालिक नहीं था, लिहाजा तलाक लग़्व चली गई, और नीज इसको खबर पर महमूल करना भी सही है, असल में तो अंति तालिकुन खबर ही है भाई, और इसको खबर पर भी महमूल कर सकते हैं कि अंति तालिकुन से उसकी क्या मुराद थी, तलाक से आदम निकाह मुराद था कि कल तू आदम निकाह वाली थी, देखो कल तुम्हारा निकाह नहीं था और आज हम दोनों का निकाह हो चुका है भाई। या खावन ने कहा अंति तालिकुन अमसी, हो सकता है बीवी को पहले किसी और खावन ने तलाक दी हो तो उससे भी इसको खबर बनाया जा सकता है कि देखो कल तू तलाक वाली थी और आज तू निकाह वाली हो चुकी है। और अगर खावन का पहले से निकाह था इसके साथ, खावन का निकाह इससे साल पहले हुआ था और अब वह बीवी से कहता है अंति तालिकुन अमसी, गुजश्ता कल तुझे तलाक है, तो अब गुजश्ता कल तो खावन तलाक का मालिक था, लिहाजा अब तलाक की निस्बत सही कर रहा है तो तलाक वाकई होगी, लेकिन गुजश्ता काल में नहीं हो सकती क्योंकि वो तो जमाना गुजर चुका है, तो फिर फिलहाल ही तलाक वाकई हो जाएगी भाई। और अगर खावन ने बीवी से कहा कि तुझे तलाक है मेरे तुझसे निकाह करने से पहले, तो इस सूरत में भी तलाक वाकई नहीं होगी क्योंकि निकाह से पहले तो यह तलाक का मालिक ही नहीं था भाई। उसके बाद कुछ जर्फ वगैरह और शर्त की सूरतें जिक्र की साहिब हिदाया ने कि अगर खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन मता लम उतल्लिक की, कि तुझे तलाक है जब मैं तुझे तलाक न दूं, जिस वक्त मैं तुझे तलाक न दूं, तो जैसे ही खावन खामोश होगा यह जुमला कहने के बाद फौरन तलाक वाके हो जाएगी, इसलिए क्योंकि उसने क्या कहा था कि तुझे तलाक है जिस वक्त मैं तुझे तलाक न दूं, तो थोड़ा सा वक्त पाया गया जिसमें उसने तलाक नहीं दी तो शर्त पूरी हो गई, और जब शर्त पूरी हो जाए तो मशरूत पाया जाता है, लिहाजा इसको तलाक हो जाएगी। तो मता का भी यही हुक्म है, मां का भी यही हुक्म है, और मता मां का भी यही हुक्म है। और अगर खावन इन ले आता है अंति तालिकुन इल्लम उतल्लिक की, तो फिर इस सूरत के अंदर आखिर उम्र के अंदर तलाक वाकई होगी। वजह यह कि खावन ने क्या कहा अंति तालिकुन इल्लम उतल्लिक की, कि तुझे तलाक है अगर मैं तुझे तलाक ना दूं जी। तो जब शर्त पूरी होगी तब तलाक वाके होगी, और उसने क्या कहा है अगर मैं तुझे तलाक ना दूं, और वो तो जिंदगी के हर हर जुज में इहतमाल है, वो तलाक दे सकता है, लिहाजा तलाक वाके नहीं होगी। लेकिन आखिरी लम्हा जब जिंदगी का आ जाएगा जिसमें वो अंति तालिकुन कह ही नहीं सकता, अब शर्त पूरी हो गई, उसने कहा था अगर मैं तुम्हें तलाक न दूं, और आखिरी लम्हा आ गया और उसने भी तलाक नहीं दी और ना आगे अब दे सकता है, तो शर्त पूरी हो गई, लिहाजा अब तलाक वाकई हो जाएगी। और औरत के इंतकाल की सूरत में भी यही हुक्म है, औरत की भी जब आखिरी लम्हा आ गया जिसमें खावंद अब अंति तालिकुन भी नहीं कह सकता, तो उस वक्त उसको तलाक हो जाएगी भाई। और जबकि ईजा के अंदर साहिबैन और इमाम साहिब का इख्तिलाफ था, मैंने बताया था कि दरअसल इजा के अंदर उलमाए कूफा और उलमाए बसरा का इख्तिलाफ है, यह इजा जर्फ के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और शर्त के लिए भी आता है, तो उलमाए कूफा फरमाते हैं यह दोनों में हकीकत है, जर्फ के लिए आए तो भी यह इसका हकीकी माना और शर्त के लिए आए तो यह भी इसका हकीकी माना, जबकि उलमाए बसरा फरमाते हैं कि यह इजा हकीकत है वक्त के लिए और शर्त के लिए यह जो इस्तेमाल होता है वह मजाज है। तो साहिबैन जो हैं वो उलमाए बसरा के मजहब के मुताबिक वो कहते हैं कि ये ईजा वक्त के लिए है, किसके लिए है वक्त के लिए, तो इसका वही हुक्म होगा जो मता और मता मा का था, और मता और मता मा के अंदर तो जैसे ही खावंद खामोश होता था तलाक हो जाती थी, लिहाजा ईजा खावंद लाएगा तो भी खावंद के खामोश होते ही फौरन तलाक हो जाएगी। मसलन खावंद ने बीवी से कहा अंति तालिकुन ईजा लम उतल्लिक की, या इजा मा लम उतल्लिक की, इजा का भी वही हुक्म और इजा मा का भी वही हुक्म है। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं, इमाम साहब फरमाते हैं कि ये ईजा जो है शर्त के लिए भी आता है और वक्त के लिए भी आता है, दोनों इसके हकीकी माना है। लिहाजा जब खावन ने कहा अंति तालिकुन ईजा लम उतल्लिक की, अब अगर इस ईजा को हम शर्त के लिए बनाएं तो तलाक वाकई होगी आखिर उम्र में, और अगर हम इस ईजा को वक्त के लिए करार दें तो फिर तलाक फौरन उसी वक्त वाकई हो जाएगी जब खावन खामोश होगा। भाई तो अब जब खावन ने यह जुमला कह दिया तो कुछ लम्हे गुजर गए, अब शक आ गया, पता नहीं तलाक वाकई हुई है या नहीं, क्योंकि वक्त के लिए बनाया जाए तो हो गई है, शर्त के लिए बनाया जाए तो नहीं हुई, लिहाजा इस शक और एहतमाल की वजह से तलाक वाकई नहीं होगी। तलाक यकीन के जरिए हो सकती है, शक के जरिए नहीं हो सकती, क्योंकि निकाह तो यकीनी है, तो निकाह को खत्म करने के लिए तलाक भी कैसी चाहिए, यकीनी चाहिए, शक की वजह से यह तलाक वाकई नहीं होगी। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। वलौ काला अंति तालिकुम मालम उतल्लिक की अंति तालिकुन फहिया तालिकुम बिहादिही ततलीका, वही सूरत। इधर देखिए, खावन ने बीवी से कहा, पहली मिसाल क्या गुजरी थी, अंति तालिकुन मालम उतल्लिक की, तुझे तलाक है, जिस वक्त मैं तुझे तलाक न दूं। तो पिछले मसले में इतना कहकर खावन खामोश हो गया था, लेकिन इस मसले में वो खामोश नहीं होता, साथ ही अंति तालिकुन भी कह देता है, अंति तालिकुन इल्लम उतल्लिक की अंति तालिकुन, तुझे तलाक है, अगर मैं तुझे तलाक ना दूं तुझे तलाक है, साथ ही तलाक भी दे देता है जी। तो इस सूरत के अंदर याद रखो, इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं दो तलाकें हो गई, कितनी, दो तलाकें, जबकि हमारे अइम्मा फरमाते हैं कि नहीं, सिर्फ ये जो बाद में इसने वाकई की है तलाक, ये वाली वाकई होगी, क्योंकि इसने क्या कहा था, अगर मैं तुझे तलाक ना दूं तो फिर तुझे तलाक है, और इसने तो तलाक दे दी, लिहाजा वो पहले वाली की शर्त पूरी नहीं, जब उसकी शर्त पूरी नहीं तो वो तलाक भी वाकई नहीं। बात समझ में आ गई। जबकि इमाम जुफर फरमाते हैं नहीं, दोनों हो गई। वजह यह, वो फरमाते हैं कि देखो, जब इस शख्स ने कहा अंति तालिकुन मालम उतल्लिक की, और उसके फौरन बाद क्या कहता है, मिलाकर बगैर वक्फा किए अंति तालिकुन भी, मसलन यूं कहता है अंति तालिकुन मालम उतल्लिक की अंति तालिकुन, देखो सारा मिलाकर कहा है। तो इमाम जुफर फरमाते हैं कि दोनों हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा, शर्त क्या लगाई, जिस वक्त मैं तुझे तलाक ना दूं तो तुझे तलाक है, और ये कहते ही आगे वो अंति तालिकुन कह रहा है। और मुझे बताइए, जब अभी उसने बात पूरी नहीं की, आखिर में सिर्फ ये कहा अंति, सिर्फ इतना कहा अंति, तलाक हुई, सिर्फ अंति अभी कहा है, अंति तालिकुन मालम उतल्लिक की अंति तालिकुन, ये जो आखिर वाला अंति तालिकुन है, जरा इस पर नजर रखें, पीछे क्या शर्त जिक्र की, अगर मैं तुझे तलाक ना दूं तो तुझे तलाक है, आगे अभी वो बात कर रहा है, रुका नहीं है, मुसलसल उसने बात की है, लेकिन जब तक उसने सिर्फ अंति कहा था, तलाक हुई थी सिर्फ अंति कहने से, नहीं, सिर्फ अंति कहने से तो तलाक नहीं होती, फिर अंति त्वार अलिफ को भी ले आया, अभी भी तलाक नहीं, फिर लाम ले आया अंति त्वाली, अभी भी तलाक नहीं, हां अंति तालिक जैसे ही काफ आया अब तलाक हो गई। तो मालूम हुआ थोड़ा सा वक्त तो पाया गया ये जो अंति तालिकुन के पूरा करने से पहले पहले, अभी जब उसने सिर्फ अंति तौली कहा था, अंति तौली कहा था, तो ये थोड़ा सा वक्त तो पाया गया जिसके अंदर उसने तलाक नहीं दी, लिहाजा वो पहली की भी शर्त पूरी हो गई, थोड़ा सा वक्त पाया गया जिसमें तलाक नहीं दी थी वो भी वाकई हो गई, और ये दूसरे का भी काफ पूरा हुआ तो साथ ही दूसरी भी हो गई। तो कहते हैं वलौ काला अंति तालिकुम मालम उतल्लिक की अंति तालिकुन, अगर खावन ने ये अल्फाज कहे फहिया तालिकुन बिहादिही ततलीकती, तो औरत जो है वो तलाक वाली हो जाएगी इस तलाक देने से, यानी उसको एक तलाक होगी हमारे अइम्मा के नजदीक। माना हु काला दालिका मौसूलम बिही, साहिब हिदाया फरमाते हैं माना इसका यह है, काला दालिका मौसूलम बिही के खावन ने ये जो आखिर में अंति तालिकुन कहा है, मौसूलम बिही, इसने वो शर्त के साथ मिलाकर कहा है, انتی طالقم ما لم اطلق کی انتی طالقن، تو یہ آخری انتی طالقن کو اس نے موصولن کہا ہے، ملا کر کہا ہے. تو کہتے ہیں معنی ہو معنی اس کا یہ ہے، قال ذالک موصولن بھی، کہ خاون نے یہ انتی طالقن ما قبل کے ساتھ ملا کر کہا ہے. والقیاس ان یقع المضاف، اور قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ طلاق بھی واقع ہو جائے جو مضاف ہے، جو پہلی طلاق ہے. انتی طال، تجھے طلاق ہے، ما لم اطلقی، جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں. تو اس طلاق کی اس نے نسبت کی ہے وقت کی طرف، کہ جس وقت میں طلاق تجھے نہ دوں. قیاس یہ تقاضا کرتا ہے یہ مضاف طلاق بھی واقع ہونی چاہیے اور آگے دوسری انتی طالقن بھی واقع ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں والقیاس ان یقع المضاف، اور قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ مضاف طلاق جو ہے وہ بھی واقع ہو جائے. فیقعانی، تو دونوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. ان کانت مدخولا بها، اگر وہ عورت مدخول بها ہے، اگر وہ مدخول بها ہے، کیونکہ غیر مدخول بها تو ایک ہی طلاق سے بائنہ ہو جاتی ہے، توجہ ہے. تو اگر وہ عورت مدخول بها ہے تو قیاس یہ تقاضا کرتا ہے دونوں ہونی چاہیے. وہو قول زفر رحمہ اللہ، اور یہی قول ہے امام زفر رحمہ اللہ کا. لئنہ وجد زمان لم یطلقها فیہ، اس لیے کیونکہ ایسا زمانہ پایا گیا، لم یطلقها فیہ، جس کے اندر خاوند نے اسے طلاق نہیں دی تھی. بھئی وہ کب، وہ زمانہ کیسے پایا گیا، میں نے بتلا دیا، جب تک خاوند نے آخر میں انتی طالقن کا لفظ بھی پورا نہیں کیا تھا، اس دوران وہ وقت پایا گیا. تو کہتے ہیں لأنه وجد زمان لم يطلقها فيه، اس لیے کیونکہ ایسا زمانہ پایا گیا جس کے اندر خاوند نے اس عورت کو طلاق نہیں دی تھی. وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ وقت تھوڑا سا تھا. بھئی اور وہ کون سا زمانہ ہے، کہتے ہیں وَهُوَ زَمَانُ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ، اور وہ خاوند کے قول انتی طالقن کا زمانہ ہے. قبل ان يفرغ منها، قبل کے خاوند اس کے کہنے سے فارغ ہو، یعنی اس کے پورا کرنے سے پہلے پہلے جو وقت ہے. وجہ الاستحسانی، استحسان کی وجہ یہ ہے، امام زفر کا قول وہ قیاس ہے اور ہمارے باقی ائمہ کا قول اس کو استحسان کہا، کیونکہ استحسان اسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کیا آئے، قیاس آئے. بھائی تو یہاں پر بھی قیاس خفی کو استحسان کہا. وجہ الاستحسانی، استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان زمان البر مستثنا عن الیمین بدلالت الحال، ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، جب خامند نے انتی طالقن ما لم اطلق کی انتی طالقن کہا، تو قیاس تو یہی تقاضا کرتا ہے کہ پہلی بھی ہونی چاہیے اور دوسری بھی ہونی چاہیے، لیکن استحسانن جو ہے پہلی طلاق، وہ جو طلاق جس کی نسبت وقت کی طرف کی گئی تھی، وہ واقع نہیں ہوگی. بھائی استحسانن وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کیونکہ قسم کو پورا کرنے کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ مستثنا ہوتا ہے. کوئی شخص بھی جب قسم اٹھاتا ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، وہ قسم کو پورا کرنا چاہتا ہے، لہذا کم از کم اتنا وقت اس کو ملنا چاہیے جس میں وہ قسم پوری کر سکے. کوئی شخص جب قسم اٹھاتا ہے اس کا کیا ارادہ ہوتا ہے، قسم کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، لہذا اتنا وقت جس میں وہ قسم کو پورا کر سکے اتنا وقت مستثنا ہوگا، اتنا وقت مستثنا ہوگا، اتنا وقت گزرنے سے وہ حانث نہیں ہوگا، قسم نہیں ٹوٹے گی. مثلا ایک شخص نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کسی بات پر وہ غصے میں آیا اور کہتا ہے واللہ یہ کپڑے میں نہیں پہنوں گا، قسم اٹھا لی اور یہ کہتے ہی اس نے کپڑے اتارنا شروع کر دیے، لیکن کپڑے اتارتے اتارتے بھی چند لمحے گزریں گے یا نہیں، چند لمحے گزر گئے اور اس نے تو کیا کہا تھا واللہ میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گا، تو اتارتے اتارتے بھی چند لمحے تو ابھی یہ کپڑے پہنے ہی ہوئے ہیں، پوری طرح بھی اترے نہیں، تو لہذا اس کو تو حانث قرار دینا چاہیے کہ تمہاری قسم ٹوٹ گئی ہے. یا اسی طرح ایک شخص ایک سواری پر سوار ہے اور کہتا ہے واللہ میں اس سواری پر سوار نہیں ہوں گا، اس نے قسم کھا لی اور یہ کہتے ہی اس نے اترنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی اترتے اترتے چند لمحے تو لگ جائیں گے بھائی، تو یہ تو سواری پر ہے چند لمحے، لہذا اس کو تو حانث ہونا چاہیے. یا اسی طرح دوسری مثال لے لو، ایک شخص جو ہے وہ قسم کھاتا ہے کہ واللہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا اور یہ کہتے ہی اس نے سامان اٹھانا شروع کر دیا باہر نکالنے کے لیے، تو دیکھو اب جب سامان اٹھا رہا ہے کچھ لمحے تو وہ گھر میں رہا بھائی، तो इसको क्या होना चाहिए? हानिस। लेकिन हमारे उलमा फरमाते हैं इन तीनों सूरतों में यह शख्स हानिस नहीं, इसने कसम उठाई वल्लाह मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा और साथ ही उतारना शुरू कर दिए तो हानिस नहीं, अगरचे कुछ लम्हे कपड़े पहने ही हुए हैं। वजह यह कि इतना वक्त तो आदमी को मिलना चाहिए जिसमें उस कसम को क्या कर सके, पूरा कर सके। एक आदमी सवारी पर सवार है और कहता है वल्लाह मैं इस सवारी पर सवार नहीं होऊंगा, तो उतरते उतरते भी कुछ लम्हे गुजर गए, लेकिन इतना वक्त तो होना चाहिए जिसके अंदर यह क्या कर सके, सवारी से उतर सके। तवज्जो है। तो थोड़ा सा वक्त जिसमें इंसान कसम पूरी कर सके, कम से कम इतना वक्त तो उसको मिलना चाहिए, तो यह वक्त मुस्तस्ना होता है कसम से, यह वक्त कसम से मुस्तस्ना होता है। तो लिहाजा यहां पर भी इसी तरह है, उस शख्स ने क्या कहा है, अंतितालिकुन मालम उतल्लिक की अंतितालिकुन। तो कयास तो क्या तकाजा कर रहा है कि आखिर में ये जो अंति तालिकुन कह रहा है तो कुछ थोड़ा सा वक्त तो पाया गया, लिहाजा पहली तलाक भी वाकई होनी चाहिए और ये दूसरी वाली भी वाकई होनी चाहिए, कयास ये तकाजा करता है। लेकिन हमारे आइमा फरमाते नहीं, यहां पर जब उसने कसम खाई है, कसम के जरिए इंसान की नीयत यह होती है कि वो उसको पूरा करना चाहता है, लिहाजा इसको इतना वक्त मिलना चाहिए कि जिसके अंदर वो कसम को पूरा कर सके भाई। लिहाजा ये जो अंति तालिकुन कहते कहते थोड़ा सा वक्त गुजरा है, ये वक्त मुस्तस्ना होगा क्योंकि कम अज कम इतना तो वक्त मिले जिसमें वो अंति तालिकुन कह सके भाई, अपनी कसम को क्या कर सके, पूरा कर सके भाई। तो कहते हैं वजहुल इस्तेहसान, इस्तेहसान की वजह यह है कि अन्न जमान अल बिर्री मुस्तस्ना अनिल यमीनी, बिर उनका माना कसम का पूरा करना, अन्न जमान अल बिर्री मुस्तस्ना अनिल यमीनी के कसम पूरा करने का जो जमाना है वो मुस्तस्ना होता है अनिल यमीनी कसम से, बिदलालतिल हाली, किस वजह से मुस्तस्ना होता है, दलालत हाल की वजह से। भाई क्या दलालत हाल है, कहते हैं लिअन्नल बिर्रा हुअल मकसूदू, इसलिए क्योंकि कसम को पूरा करना ही मकसूद होता है। कोई शख्स जब कसम उठाता है उसका क्या मकसद होता है, वैसे ही कसम उठा रहा है या उसको पूरा करना चाहता है, उसको पूरा करना। एक शख्स कहता है वल्लाह मैं ये काम जरूर करूंगा, तो ये कसम इसीलिए उठा रहा है कि इस काम को करना चाहता है भाई। तो कहते हैं ये जो कसम पूरा करने का जमाना है ये मुस्तस्ना होगा अनिल यमीनी कसम से, भी दलालतिल हाली, उस कसम खाने वाले की दलालत हाल से, उसकी हालत इस बात पर दलालत कर रही है, लिअन्न अल-बिर्र हुअल मकसूद, इसलिए क्योंकि कसम को पूरा करना वो मकसूद होता है। वला युमकिनुहु तहक्कुकुल बिर्र इल्ला अन युजअला हादल क़द्र मुस्तस्नन, वला युमकिनुहु तहक्कुकुल बिर्र, और उस कसम खाने वाले के लिए मुमकिन नहीं है के तहक्कुकुल बिर्री के कसम का पूरा करना पाया जाए, इल्ला अन युजअला हादल क़द्र मुस्तस्नन, मगर यह कि इतनी मिकदार को मुस्तस्ना करार दिया जाए। कसम खाने वाले के लिए तो कसम पूरा करना मुमकिन ही नहीं रहेगा, इल्ला यह कि इस वक्त को क्या किया जाए, मुस्तस्ना करार दिया जाए, फिर ही वो कसम पूरी कर सकता है। थोड़ा वक्त तो मिलना चाहिए जिसमें वो कसम पूरी कर सके भाई। मसला भी समझ में आया कि नहीं? एक शख्स ने क्या कहा, वल्लाह मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा, और फौरन उतारना शुरू कर दिए, लेकिन कुछ लम्हे तो गुजर गए या नहीं, तो लिहाजा इसको तो हानिस होना चाहिए। कहते हैं नहीं, इतना वक्त तो कम से कम मिलना चाहिए भाई जिसमें वो कसम पूरी कर सके भाई। तो ये फौरी उतार रहा है, तो ये जो कपड़े उतारने का वक्त है ये उस कसम से मुस्तस्ना होगा, इससे वो हानिस नहीं होगा। तो कहते हैं वला युमकिनुहु तहक्कुकुल बिर्री, और उस शख्स के लिए मुमकिन नहीं है कि कसम का पूरा करना पाया जाए, इल्ला अन युजअला हादल क़द्र मुस्तस्ना, मगर यह कि इतनी मिकदार को मुस्तस्ना करार दिया जाए, व असलुहु, और असल इसकी जो है मन हलफ ला यस्कुनु हादिहि दारा, कि जिस शख्स ने कसम उठा ली, ला यस्कुनु हादिहि दारा, के वो इस घर में रिहाइश नहीं रखेगा, फश्तगला बिन नकलती मिन साअती ही, तो वो उसी घड़ी के अंदर मुंतकिल होने में मशगूल हो गया, तो इसमें भी वो शख्स हानिस नहीं होगा। वह अखावातुहु अलामा यती कफिल अयमानी, और नीज जो इसके मुशाबे मसले हैं, अलामा यती कफिल अयमानी इंशा अल्लाह ताला, बवजह उसके जो आप पर आ जाएंगे किताबुल अयमान में इंशा अल्लाह। ये मसला, ये उसने जो सामान मुंतकिल करना शुरू कर दिया, या इसके अखवात जो हैं, इस जैसे और मसले जैसे मैंने जिक्र कर दिया, एक आदमी ने कसम उठाई वल्ला मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा और साथ ही उतारना शुरू कर दिए, तो ये हानिस नहीं भाई, क्योंकि इतना वक्त मुस्तस्ना है जिसमें वो कसम पूरी कर सके। यह शख्स सवारी पर सवार है और कहता है वल्लाह मैं इस सवारी पर सवार नहीं होऊंगा और साथ ही उसने उतरना शुरू कर दिया, अब अगरचे कुछ लम्हात गुजर गए लेकिन इतना वक्त मुस्तस्ना है दलालत हाल से, क्योंकि कसम खाने वाले की हालत बतला रही है वो इस कसम को पूरा करना चाहता है, लिहाजा इतना वक्त मिलना चाहिए जिसमें वो कसम को पूरा कर सके। यहां आपके जहनों में एक इश्काल आएगा कि ऊपर बात क्या थी, अंति तालिकुन मालम उतल्लिक की, तुझे तलाक है जिस वक्त मैं तुझे तलाक न दूं, तो यहां तो शर्त और मशरूत है और यहां जिक्र कर रहे हैं यमीन को, कसम को, किसको, शरा के अंदर कसम को जिक्र कर रहे हैं और मतन में तो कसम जिक्र नहीं है, वहां तो खावन ने कोई वल्लाह वगैरह नहीं कहा, कसम नहीं खाई, उसने तो शर्त जजा जिक्र की है, तो ऊपर तो शर्त का जिक्र है और आप शरा के अंदर किसको जिक्र कर रहे हैं, यमीन को, कि कसम से इतना वक्त मुस्तस्ना होना चाहिए भाई। मतन में तो अंति तालिकुन मालम उतल्लिक की, वहां तो तालीक हो रही थी और शरा के अंदर साहिबे हिदाया यमीन जिक्र फरमा रहे हैं। तो मैंने आपको बतलाया था कि तालीक को भी शरान यमीन कहते हैं, तालीक को भी शरान यमीन कहते हैं, इसलिए क्योंकि जब किसी काम के करने की कसम उठाता है मालूम हो वो अपनी जात को उभार रहा है कि ये काम जरूर करना पड़ेगा। मसलन एक शख्स कहता है वल्लाह मैं लाहौर जरूर जाऊंगा, तो देखो ये कसम खाकर गोया वो अपने नफ्स को उभार रहा है कि अब तो मैंने कसम खा ली है, अब तो ये काम करना ही पड़ेगा। तो कसम के जरिए किसी काम के करने पर उभारा जाता है और बाज औकात कसम के जरिए किसी काम से रोकना मकसूद होता है। मसलन कोई शख्स कहता है वल्लाह मैं ये काम नहीं करूंगा, तो ये कसम के साथ इस नफी कर रहा है, मकसद यह है अपने नफ्स को रोक रहा है कि ये काम नहीं करना, अब तो मैं कसम खा चुका हूं, अब ये कसम पूरी करना पड़ेगी। तो कसम के जरिए किसी काम के करने पर उभारा जाता है या किसी काम से रोकने पर उभारा जाता है और तालीक के अंदर भी यही मकसूद होता है। मसलन एक शख्स अपनी बीवी से कहता है इन दखलती दारफ आंति तालिकुन, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो देखो मालूम हुआ ये उसको उस घर में जाने से रोकना चाहता है। तो ये तो था एक काम से रोकने के लिए तालीक की, और कभी किसी काम के करने के लिए तालीक की जाती है। खामन बीवी से कहता है अगर तू उस घर में न गई तो तुझे तलाक है, तो देखो मालूम हो उसके घर में जाने पर वो उसको उभार रहा है भाई। तो जैसे कसम किसी काम पर उभारने के लिए या किसी काम से रोकने के लिए खाई जाती है, इसी तरह तालीक भी किसी काम पर उभारने के लिए या किसी काम से रोकने के लिए की जाती है। तो इसलिए फिका के अंदर तालीक को भी यमीन कहते हैं। और मैंने आपको यह भी बतलाया था अगर मुतलक तालीक है जिसके अंदर किसी काम के करने पर उभारना ना हो या रोकना ना हो तो उसको यमीन नहीं कहते। मसलन एक शख्स अपनी बीवी से कहता है अंति तालिकुन इदा जा अल गद, जब कल का दिन आ जाए तो तुम्हें तलाक है। अब देखो यहां किसी काम से रोकना नहीं, अब हर हाल में अगले दिन तलाक होगी, तो न किसी काम पर उभारना यहां मकसूद है और न किसी काम से रोकना मकसूद है, तो इस किस्म की तालीक उसको यमीन नहीं कहते भाई। तो लिहाजा इसलिए मतन में जो तालीक थी उसको भी यमीन ही कहेंगे। तो साहिब हिदाया ने भी यमीन को जिक्र किया शरा के अंदर भाई। तो कहते हैं वह असलू मन हलफ अलायसकुन हादिही दारा, और असल इस मसले की यानी इस मसले की नजीर जो है वो शख्स जिसने कसम उठा ली कि वो इस घर में नहीं रहेगा, फश्तगल बिन नकलति मिन साअतिही, तो वो मशगूल हो गया मुंतकिल होने में, मिन साअतिही उसी घड़ी के अंदर, वह अखवातुहु और इसी तरह जो इसके मुशाबे मसले हैं यानी वो कपड़े पहनने वाले ने कसम उठाई है या सवार ने कसम उठाई है, अलामा याती कफिल ऐमानी इंशा अल्लाह ताला, बवजह उसके जो आपके पास किताबुल ऐमान में इंशा अल्लाह ताला आ जाएगा, वमन काल अली इमरातिन यौम अतज़व्वजुकी फअंत तालिकुन फतज़व्वजहा लैलन तुल्लिकत। ये मसला अच्छी तरह समझ लो भाई, ये जरा मुश्किल मसला है। वमन काल अली इमरातिन, और जिस शख्स ने किसी औरत से कहा, बीवी नहीं है किसी और औरत से एक शख्स कहता है, यौम अतज़व्वजुकी फअंत तालिकुन, जिस दिन मैं तुझसे निकाह करूं तो तुझे तलाक है, यौम अतज़व्वजुकि फअंति तालिकुन, जिस दिन मैं तुझसे निकाह करूं तो तुझे तलाक है। फतज़व्वजहा लैलन, तो रात को उसने उससे निकाह किया, रात को, तो कहते हैं तुल्लिकत, फिर भी तलाक हो जाएगी। भाई उसने तो यौम को जिक्र किया था, यौम अतज़व्वजुकि फअंति तालिकुन, लेकिन रात को भी अगर निकाह करेगा तो औरत को तलाक हो जाएगी। वजह यह आपको बतलाएंगे, भाई तवज्जो से जाब्ता समझ लो कि जो यौम का लफ्ज है यह कभी दिन के माना में होता है, दिन यानी सुबह से शाम तक, यह जो यौम है कभी यह इस दिन के माना में होता है यानी नहार के माना में होता है। नहार किसे कहते हैं अरबी में? सुबह से शाम तक का जो वक्त है, जो रोशनी का वक्त है, उजाले का वक्त है, इसको नहार कहते हैं। तो यह यौम का लफ्ज कभी नहार के माना में होगा और कभी कभार यह यौम का लफ्ज मुतलक वक्त के माना में होता है। मुतलक वक्त, कोई भी वक्त हो, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। भाई तो लिहाजा अब कहां पर यह यौम दिन के माना में होगा और कहां यह यौम मुतलक वक्त के माना में होगा, तो जाब्ता याद रखना। उलमा इसके लिए जाब्ता बयान फरमाते हैं कि कहां पर यौम जो है वो नहार के माना में होगा और कहां यौम मुतलक वक्त के माना में होगा। पहले फेले मुमतद और गैर मुमतद को समझ लें। याद रखो फेले मुमतद वो है जिसके अंदर इम्तेदाद हो, तूल हो, यानी जिसके लिए कोई मुद्दत बयान की जा सके, और फेले गैर मुमतद वो है जिसमें इम्तेदाद और लंबाई ना हो, यानी जिसके लिए कोई मुद्दत बयान न की जा सके। बास फेल मुमतद होते हैं, उनमें तूल होता है, वो कुछ मुद्दत के लिए हो सकते हैं, मसलन चलना, जैसे आप कहते हैं सिर तु यौमन, मैं सारा दिन चलता रहा। तो देखो चलने के अंदर इम्तेदाद है, इंसान चलता रहे तो फेल में इम्तेदाद है, घंटा चले, दो घंटे चले, तीन घंटे चले, तो इस सैर के अंदर, चलने के अंदर इम्तेदाद है, यह फेले मुमतद है। और इसी तरह रोजा जो है यह भी फेले मुमतद है। देखो रोजा का फजरे सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक होता है, तो देखो इसमें तूल है, लंबाई है भाई। या इसी तरह सवार होना, सवार होना यह भी फेले मुमतद है। आप एक घंटे के लिए सवारी करते हैं या दो घंटे के लिए या तीन घंटे के लिए, तो ये अफ़आल वो हैं जिनमें इम्तेदाद है। और कुछ अफ़आल गैर मुमतद होते हैं, उनमें इम्तेदाद यानी तूल और लंबाई नहीं होती। जैसे तलाक देना, खावन बीवी को तलाक देता है तो तलाक एक लम्हे में हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि तलाक आराम से एक घंटे तक वाकई होती चली जाए। तो तलाक देना क्या है? गैर मुमतद है। या इसी तरह निकाह करना, निकाह करने में भी इम्तेदाद और तूल नहीं है, जैसे ही जाब और कबूल करेंगे साथ ही निकाह मुनाकिद हो जाएगा। या इसी तरह बैअ करना, बैअत करना, यह भी इजाब और कबूल का नाम है, जैसे ही इजाब और कबूल करेंगे बैअ हो जाएगी, इसके अंदर भी इम्तेदाद नहीं है। या जैसे आना और जाना, आने के अंदर भी इम्तेदाद नहीं है, जैसे ही कोई शख्स सामने आता है हम कहते हैं वो आ गया, और जैसे ही शख्स नजरों से हटता है हम कहते हैं वो शख्स चला गया। बात समझ में आ गई? तो आना और जाना इनके अंदर भी इम्तेदाद नहीं है। तो बाज़ अफ़ाल जो हैं उनमें इम्तेदाद है, वो फ़ेले मुमतद हैं, और बाज़ फ़ेले गैर मुमतद हैं। बात चल रही थी कि यौम का लफ्ज कभी नहार के माने में इस्तेमाल होता है, यानी दिन के उजाले के लिए इस्तेमाल होता है, दिन है सुबह से शाम तक, इसको यौम कहते हैं। और बाज़ अकात यौम का लफ्ज मुतलक वक्त के लिए आता है, तो कहां पर यह मुतलक वक्त के लिए होगा यह यौम का लफ्ज, और कहां यह दिन के लिए यानी नहार के लिए होगा। तो उलमा जाब्ता बयान फरमाते हैं कि अगर यौम जो है उसके साथ फ़ेले मुमतद को जिक्र किया जाए तो फिर यह यौम नहार के माना में होगा। उलमा क्या जाब्ता जिक्र फरमाते हैं कि अगर यौम के साथ फ़ेले मुमतद को जिक्र किया जाए तो फिर यह यौम किस माना में होगा? नहार के माना में। और अगर यौम के साथ फ़ेले गैर मुमतद को जिक्र किया जाए तो फिर यह मुतलक वक्त के माना में होगा। तवज्जो है। और फिर यह भी याद रखना, यहां एक फेल वो होगा जिसकी तरफ यह यौम मुजाफ होगा। जैसे इस मिसाल पे नजर रखो, एक शख्स एक औरत से कहता है यौमा अतज़व्वजु की फअंति तालिकुन, तो देखो ये यौम की इजाफत हो रही है अतज़व्वजु की इस लफ्ज की तरफ, यानी तज़व्वुज की तरफ इजाफत हो रही है। तो यहां जिस लफ्ज की तरफ यौम की इजाफत हो रही है उसका कोई एतबार नहीं है। अब आप ये ना कहें ये तज़व्वुज जो है निकाह करना ये तो गैर मुमतद है, भाई निकाह किया जाता है वो तो एक लम्हे में हो जाता है इजाब और कबूल करते ही, तवज्जो है। तो एक फेल वो होगा जिसकी तरफ यौम की इजाफत हो रही होगी, यानी यौम मुजाफ होगा और वो मुजाफोन इले, तो याद रखना ये मुजाफिले फेल इसको आपने नहीं देखना, दूसरे फेल को देखना है जिसके लिए ये यौम जर्फ बन रहा है, जिसके लिए ये यौम जर्फ बन रहा है उसको आपने देखना है। जैसे यहां पर देखो यौम अतज़व्वजु की, जिस दिन मैं तुझसे निकाह करूं फअंति तालिकुन, तो तुझे तलाक है। यहां तो अंति तालिकुन मुअख्खर है, जरा अंति तालिकुन को मुकदम कर दो फिर बात आपको समझ में आएगी। खावंद किसी औरत से कहता है अंति तालिकुन यौम अतज़व्वजु की, अंति तालिकुन यौम अतज़व्वजु की। अब देखो यौम से पहले अंति तालिकुन जिक्र है, तुझे तलाक है, कब तलाक है यौम अतज़व्वजु की, जिस दिन मैं तुझसे निकाह करूं, तो ये यौम ज़र्फ है अंति तालिकुन के लिए, तुझे तलाक है किस वक्त यौम अतज़व्वजु, तो ये यौम ज़र्फ है अंति तालिकुन के लिए, और ये यौम मुजाफ हो रहा है अतज़व्वजु की तरफ भाई। तो दो फेल जिक्र हो गए, एक वो फेल है जिसके लिए यौम ज़र्फ बन रहा है और एक फेल वो है जिसकी तरफ यौम मुजाफ हो रहा है। तो याद रखो जिसकी तरफ यौम मुजाफ हो रहा है उसका कोई एतबार नहीं है, बल्कि वो फेल जिसके लिए यह यौम ज़र्फ बन रहा है उसका एतबार है। और वो क्या है यहां पर अंति तालिकुन, तुझे तलाक है, यानी तलाक वाला फेल है यहां पर। कौन सा फेल है? तलाक देने वाला फेल है। और मुझे बताइए तलाक देने का फेल ये मुमतद है या गैर मुमतद है? गैर मुमतद है, तलाक एक लम्हे में वाकई हो जाती है, ऐसा नहीं हो सकता कि आहिस्ता 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 तलाक वाकई हो रही हो। तो मालूम हुआ अंति तालिकुन यौमा अतज़व्वजु की, यहां ये जो अंति तालिकुन है ये फेले गैर मुमतद है, और फेले गैर मुमतद के साथ जब यौम को जिक्र किया जाए तो ये मुतलके वक्त के माना में होता है, ये मुतलके वक्त के माना में, क्योंकि तलाक में इम्तिदाद है ही नहीं, उसमें लंबाई है ही नहीं कि वो पूरे दिन का इहाता कर ले, वो पूरे दिन का इहाता, तलाक पूरे दिन का इहाता नहीं कर सकती, तलाक तो एक लम्हे में वाके हो जाएगी भाई। तो यहां पर यौम जो है वो दिन के माना में नहीं है बल्कि मुतलक वक्त के माना में है। तो माना क्या हुआ अंति तालिकुन यौम अतज़व्वजु की, तुझे तलाक है यौम अतज़व्वजु की, जिस वक्त मैं तुझसे निकाह करूं। ये यौम किस माना में हुआ? वक्त के माना में। तवज्जो है, तुझे तलाक है जिस वक्त मैं तुझसे निकाह करूं, लिहाजा रात को भी निकाह करेगा तो तलाक हो जाएगी, क्योंकि यहां यौम का क्या माना था? वक्त का। तवज्जो है। और अगर फेल मुमतद हो, अगर फेल मुमतद हो जिसके साथ यौम को जिक्र किया गया है, तो फिर इस सूरत में यह यौम से मुराद नहार होगा। यह यौम से क्या मुराद होगा? नहार मुराद होगा। मसलन एक शख्स कहता है असूमो यौम यकदिमु फुलानुन, असूमो मैं रोजा रखूंगा यौम यकदिमु फुलानुन, जिस दिन फुला आएगा। यहां अब दो फेल जिक्र हैं, असूमो मैं रोजा रखूंगा यौम यकदिमु फुलानुन, यौम आ रहा है और यौम की इजाफत हो रही है आगे यकदिमु की तरफ, तो यकदिमु क्या है? मुजाफिले है, तवज्जो है। और मैंने बताया जो मुजाफिले है उसको आपने नहीं देखना, जिसकी तरफ यौम मुजाफ हो रहा है उसका एतबार नहीं है, बल्कि जिसके लिए यौम जर्फ बन रहा है उसका एतबार है। और यौम किसके लिए जर्फ बन रहा है? असूमु मैं रोजा रखूंगा यौम यकदिमु फुलान, जिस दिन वो आएगा। तो ये यौम किसके लिए जर्फ है? असूमु के लिए। तो इस असूमु का एतबार है, और रोजा रखना यह तो फेले मुमतद है, ये फेले, जबकि कुदूम जो आना है यौम यकदिमु फुलानुन, जिस दिन फुला आएगा, आना इसमें तो इम्तिदाद नहीं है, उसमें तो इम्तिदाद नहीं है। जैसे ही जैद दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ आप कहेंगे जैद आ गया, तो आने का यह मतलब नहीं है कि कोई चलता हुआ आ रहा है तो आप, वो तो चलना है, आना तो इसको कहते हैं। जैसे ही कोई शख्स सामने आता है आप कहते हैं ये आ गया, तवज्जो है। तो लिहाजा कुदूम यानी आना इसमें तो इम्तिदाद नहीं, लेकिन रोजा रखना इसमें तो क्या है इम्तिदाद। तो असूमु यौमा यकदिमु फुलानुन, तो ये यौम जर्फ है किसके लिए, असूमु के लिए, और ये यौम मुजाफ है किसकी तरफ, यकदिमु की तरफ, और यकदिमु ये तो फेले गैर मुमतद है लेकिन इसका कोई एतबार नहीं है, मैंने बताया मुजाफिले का कोई एतबार नहीं, दूसरे फेल को देखना है। और असूमु मैं रोजा रखूंगा, रोजा रखना इसमें तो इम्तिदाद है, रोजा तो सुबह से लेकर शाम तक होता है, लिहाजा लिहाजा यहां ये यौम का लफ्ज दिन के माना में है, नहार के माना में है। असूमु मैं रोजा रखूंगा, यौम यकदिमु फुलानुन, जिस दिन फला आएगा, यहां यौम दिन के माना में है वक्त के माना में नहीं है। बात समझ में आ गई, क्या जाब्ता हुआ कि यौम कभी नहार के माना में आएगा और कभी मुतलक वक्त के माना में। नहार के माना में कब होगा, जब फेले मुमतद के साथ ये जिक्र हो, यानी फेले मुमतद के लिए ये जर्फ बने, और ये वक्त के माना में होगा जब ये फेले गैर मुमतद के लिए जर्फ बने। भाई देखिए भाई, वमन काल लिमरातिन, और जिस शख्स ने किसी औरत से कहा, यौम अतज़व्वजुकी फअंती तालिकुन, जिस दिन मैं तुझसे निकाह करूं तो तुझे तलाक है, फतज़व्वजहा लैलन, तो उसने उससे रात में निकाह किया, तुल्लिकत, तो औरत को तलाक हो जाएगी, लिअन्नल यौम युज़करु व युरादु बिही बयाज़ुन नहारी, इसलिए क्योंकि यौम के लफ्ज को जिक्र किया जाता है और इसके लिए इरादा किया जाता है, बयाज़ुन नहारी, दिन की रोशनी का, दिन की सफेदी का, यानी दिन के उजाले का इरादा किया जाता है। फयुहमलु अलैहि इदा कुरिना बिफ़िअलि यमतद्दु, लिहाजा इस यौम को इस नहार के माना पर महमूल करेंगे, इदा कुरिना बिफ़िअलि यमतद्दु, जब इस यौम के लफ्ज को मिलाया जाए बिफ़िअलि यमतद्दु फेले मुमतद के साथ, का सौमी वल अमरी बिल यदी, जैसे कि रोजा है, वल अमरी बिल यदी, और मामला हाथ में होना, खावन बीवी से कहता है अमरू की भी यदि की, तेरा मामला तेरे हाथ में है, तो खावन ने बीवी को इख्तियार दे दिया जुदाई का, खावन ने बीवी को जुदाई का इख्तियार दे दिया। तो देखो बीवी को इख्तियार देना इसमें इम्तिदाद है, एक घंटे के लिए भी दे सकता है, दो घंटे के लिए भी यह इख्तियार दे सकता है, और सारी उम्र के लिए भी यह इख्तियार दे सकता है। तो रोजा उस वो भी फेले मुमतद, और इख्तियार का अपने हाथ में होना यह भी क्या है, फेले मुमतद है भाई। तो कहते हैं फयुहमलु अलैहि इदा कुरिना बिफ़िअलि यमतद्दु, लिहाजा ये यौम का लफ्ज जो है इस नहार के माना पर महमूल किया जाएगा, इदा कुरिना बिफ़िअलि यमतद्दु, जब इस यौम के लफ्ज को मिलाया जाए फेले मुमतद के साथ, का सौमी जैसे कि रोजा है, ये भी फेले मुमतद है, वल अमरी बिल यदि, और मामला अपने हाथ में होना ये भी फेले मुमतद है, लिअन्नहु युरादु बिहिल मेयारु, इसलिए क्योंकि इसके जरिए मेयार का इरादा किया जाता है, किसका मेयार भाई, मेयार मेयार उस जर्फ को कहते हैं कि मजरूफ उसका इहाता कर ले, कोई जायद वक्त ना बचे, जैसे रोजा सुबह सादिक से लेकर शाम तक ये सारे नहार को घेर लेता है, नहार का एक जुज भी रोजे से खाली ना बचा भाई जी। तो ये नहार को क्या कहेंगे, ये मेयार है रोजे के लिए, ये रोजे के लिए यानी ये उसका पैमाना है, पैमाना है, मेयार क्या माना, पैमान, ये उसका पैमाना है। तो मेयार वो जर्फ के मजरूफ उसको पूरा घेर ले और उसमें से कोई वक्त जायद ना बचे भाई। तो लिहाजा जब फेले मुमतद को जिक्र किया जा रहा है, तवज्जो है, तो फेले मुमतद तो वो है जिसके अंदर इम्तिदाद है, तूल है, तो जब उसके साथ यौम को जिक्र किया जा रहा है, मालूम हुआ यौम को उसके लिए मेयार बनाया जा रहा है कि सारे यौम के अंदर यह फेल होगा जी। इस सारे यौम में यह फेल होगा, तो यौम को उसके लिए मेयार बनाया जा रहा है, लिहाजा यौम से नहार मुराद लेंगे, मुतलक वक्त मुराद नहीं लेंगे। तो कहते हैं लिअन्नहु युरादु बिहिल मेयारु, इसलिए क्योंकि इसके जरिए इसके मेयार का इरादा किया जाएगा कि ये यौम क्या है, ये मेयार है। वहादा अलयकु बिही, और ये वाला माना जो है ये ज्यादा लायक है फेले मुमतद के कि उसके साथ यौम का नहार वाला माना किया जाए। वह युरादु बिही मुतलकुल वक्ति, और नीज यौम का लफ्ज जिक्र किया जाता है और इसके जरिए मुतलक वक्त का इरादा किया जाता है। काल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वमन युवल्लिहिम यौम इदिन दुबुरा, वमन युवल्लिहिम, और जो कोई इनसे फेरेगा यौम इदिन उस दिन दुबुरहू अपनी पुश्त, और जो कोई उस दिन इन मुशरिकीन से अपनी पुश्त फेरेगा। याद रखो ये गजवाए बदर के मौके पर अल्लाह ने गजवाए बदर चूंकि इस्लाम और मुशरिकीन के दरमियान पहला मारेका था और मुसलमान बिल्कुल बेसरो सामान थे और कुफार पूरी तरह असलहे से लेस होकर आए थे और मुसलमानों से कई गुना ज्यादा उनकी तादाद थी, तो उस मौके पर अल्लाह फरमाते हैं वमन युवल्लिहिम यौम इदिन दुबुरहू, और जो शख्स उस दिन इन मुशरिकों से अपनी पुश्त फेर लेगा इल्ला मुतहर्रिफन लिल्किताली औ मुतहय्यिजन इला फियतिन, इल्ला मुतहर्रिफन लिल्किताली, तहर्रुफ का माना है पलटना, इल्ला मुतहर्रिफन लिल्कितालिन, मगर यह कि लड़ाई के लिए वो पलटता है, लड़ाई के लिए वो पलटता है यानी कोई जंगी चाल चलता है, औ मुतहय्यिजन इला फियतिन, या वो किसी जमात की तरफ माइल होता है। तो इन दो का इस्तेस्ना कर दिया, बाकी जो भी इस दिन पुश्त फेरेगा फकत बा बि गजब मिन अल्लाह, तो तहकीक वो बा का मान लौटना, तो वो अल्लाह के गजब के साथ लौटेगा। वह मावाहु जहन्नमु, और उसका ठिकाना जहन्नम होगा और जहन्नम बड़ा ही बुरा ठिकाना है। तो देखो ये गजवा बदर के मौके पर सख्त हुक्म नाजिल हुआ अल्लाह की तरफ से कि चूंकि मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान पहला मारेका था इसलिए अल्लाह ताला ने मोमिनों पर सख्त हुक्म नाजिल फरमाया ताकि ये खूब जम कर लड़ें और मुशरिकीन की जड़ काट दें। भाई तो यहां पर देखो पुश्त फेरने वाले के लिए अल्लाह ताला अपने गजब का ऐलान फरमा रहे हैं और जहन्नुम का ऐलान फरमा रहे हैं। हां दो किस्म के लोगों का इस्तिस्ना कर दिया, पुश्त फेरने से दो किस्म के लोगों का इस्तेसना कर दिया, एक वो शख्स जो पुश्त फेरता है किसी जंगी चाल के तौर पर, पीछे पलटा थोड़ा सा पीछे गया और फिर उसने पलटकर दोबारा हमला किया, तो अगर इस नियत से कोई पुश्त फेरता है उसको इजाजत है वो कर सकता है, या कोई इसलिए पुश्त फेरता है कि पीछे जाकर अपने साथियों के साथ मिलकर फिर दोबारा लौटकर हमला करेगा, तो इन दो का इस्तेसना है। इसके अलावा अगर कोई भी पुश्त फेरेगा तो उसके लिए अल्लाह ने अपने गजब का और जहन्नम का ऐलान फरमाया। भाई तो चूंकि ये पहला मारेका था इसलिए इसमें खास तौर पर यह सख्त हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया। भाई हां बाद में फिर नरमी कर दी गई इसके अंदर, बात समझ में आ गई। तो बहरहाल बात चल रही थी वमन युवल्लिहिम यौम इदिन दुबुरहू, और जो इन मुशरिकीन से अपनी पुश्त फेरेगा उस दिन। यहां देखो यौम का लफ्ज आया यौम, और पीछे क्या जिक्र है पुश्त फेरना, और पुश्त फेरना ये तो फेले मुमतद नहीं है, पुश्त फेरना तो एक लम्हे का काम है, बात समझ में आ गई, लिहाजा इसमें इम्तिदाद नहीं, और फेले गैर मुमतद के साथ जब यौम को जिक्र किया जाए तो वो मुतलके वक्त के माना में होता है। तो अब आयत का माना ये हुआ वमन युवल्लिहिम यौम इदिन दुबुरहू, और जो कोई पुश्त फेरेगा इन मुशरिकीन से यौम इदिन उस दिन यानी उस वक्त। तो यहां यौम किस माना में है, वक्त के माना में है, यानी ना दिन को पुश्त फेरना जायज है और ना रात को पुश्त फेरना जायज है, सबका एक ही हुक्म है। तो यहां यौम किस माना में है, यहां यौम मुतलके वक्त के माना में है, इसलिए क्योंकि इसके साथ जो फेल जिक्र हुआ है पुश्त फेरना उसमें इम्तिदाद नहीं है। भाई तो कहते हैं قال الله تعالى, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वमन युवल्लिहिम यौम इदिन दुबुरा, वल मुरादु बिही मुतलकुल वक्त, और इससे मुराद मुतलके वक्त है। फयुहमलु अलैहि इदा कुरिना बिफ़िलिन ला यमतद्दु, तो लिहाजा इस मुतलके वक्त के माना पर इस यौम के लफ्ज को महमूल किया जाएगा। इदा कुरिना बिफ़िलिन ला यमतद्दु, जब इसको यौम के लफ्ज को मिलाया जाए ऐसे फेल के साथ जो गैर मुमतद हो। वत्तलाक मिन हादल कबीली, और तलाक भी इसी कबील से है, यानी उसमें भी इम्तिदाद नहीं है। फयंतज़िमुल्ला लवन्ना हारा, तो ये रात और दिन दोनों को शामिल होगी। वो जो खामन ने कहा था यौम अतज़व्वजुकी फअंति तालिकुन, तो यहां पर तलाक को जिक्र कर रहा है और तलाक गैर मुमतद है, और जब गैर मुमतद है तो यौम मुतलके वक्त के माना में होगा। तो लिहाजा जिस वक्त वो शादी करेगा चाहे दिन हो या रात, तलाक वाकई हो जाएगी, क्योंकि यह मुतलके वक्त के माना में है, दिन को भी शामिल है और रात को भी शामिल है। यह माना है वह तलाक मिन हादल कबीली, और तलाक भी इसी कबील से है, यानी वो भी फेले गैर मुमतद है। फयंतज़िमुल लैल वन नहारा, तो लिहाजा ये जो यौम का लफ्ज आया ये लैल और नहार दोनों को शामिल होगा, यानी ये मुतलके वक्त के माना में होगा। वलव काला, और अगर खावन ने कहा अनैतु बिही बयाज़न नहारि खासतन, कि मैंने तो खास तौर पर दिन की सफेदी का इरादा किया था। खावन क्या कहता है, मैंने तो दिन की सफेदी यानी दिन के उजाले का इरादा किया था, तो फिर कजाअन भी उसकी तस्दीक की जाएगी। कजाअन भी, क्योंकि वो अपने कलाम के हकीकी माना का इरादा कर रहा है। यौम का लफ्ज नहार के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे अभी जिक्र हुआ। वलव काला, और अगर खावंद कहता है अनई तो बिही बयाजन नहारी, कि इसके जरिए मैंने दिन के रोशनी का इरादा किया था, खास सतन खास तौर पर, दुयीना फिल कजाई, तो खावंद की तस्दीक की जाएगी कजा के अंदर भी। ले अन्नहु नवा हकीकत कलामी ही, इसलिए क्योंकि उसने अपने हकीकत कलाम का इरादा किया, अपने कलाम की हकीकत का इरादा किया, यानी हकीकी माना ही का इरादा किया है। यौम का लफ्ज दिन के उजाले पर बोला जाता है और इसने भी उसी की नीयत की है भाई। वल्लैलु ला यतनावलु इल्ला सवादा, और रात जो है ये शामिल नहीं होती मगर स्याही को। वन्नहारु ला यतनावलु इल्ला बयाज़ा खासतन, और दिन शामिल नहीं होता मगर खास तौर पर सफेदी को। सिर्फ रोशनी के वक्त को नहार कहते हैं और अंधेरे के वक्त को क्या कहते हैं, लैल कहते हैं। तो ये माना बयान कर रहे हैं साहिब हिदाया लैल और नहार का। तो कहते हैं वल्लैलु ला यतनावलु इल्ला सवादा, और रात जो है वो शामिल नहीं है मगर सिर्फ स्याही को। वन्नहारु ला यतनावलु इल्ला बयाज़ा खासतन, और नहार जो है वो शामिल नहीं है मगर सफेदी को ही, खास सतन खास तौर पर। वहुवल लुगतु, और यही लुगत है यानी यही अरबी जुबान है, यानी अरबी जुबान में ऐसा ही है। यौम का लफ्ज वो नहार के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुतलके वक्त के लिए भी, लेकिन लैल वो खास तौर पर तारीकी के लिए बोलते हैं और नहार जो है वो उजाले के लिए बोलते हैं। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, फसलुन वमन काल लिमरअतिही अना मिन की तालिकुन फलैसा बिशयइन व इन्नवा तलाकन। सूरत मसला ये, वैसे तो आमतौर पर खावन बीवी से कहता है तुझे तलाक है, अंति तालिकुन, लेकिन अगर कोई खावन बरअक्स यूं कहता है तेरी तरफ से मुझे तलाक है, खावन कह रहा है, क्या कह रहा है बीवी को, तेरी तरफ से मुझे तलाक है, यानी अपने आप को तलाक से मौसूफ कर रहा है और नियत भी तलाक की करता है, तो क्या इसे तलाक वाकई हो जाएगी, तो इंदल अहनाफ इससे तलाक वाकई नहीं होगी भाई। तलाक के साथ औरत मौसूफ होती है, तलाक के साथ खावन मौसूफ नहीं होता। लेकिन इसके बजाय अगर खावन यूं कहता है कि मैं तुझसे जुदा हूं, वैसे तो खावन यूं कहता है अमूमन तू मुझसे जुदा है, लेकिन बाज औकात जुदाई की निस्बत खावन अपनी तरफ करता है मैं तुझसे जुदा हूं, तो कहते हैं इस सूरत में जुदाई आ जाएगी, तलाक वाकई हो जाएगी। या इसी तरह हराम का लफ्ज बोलता है खावन, वैसे तो आमतौर पर खावन यूं कहेगा तू मुझ पर हराम है, लेकिन अगर खावन यूं कहता है कि मैं तुझ पर हराम हूं, अपनी तरफ हराम होने की निस्बत करता है, तो कहते हैं इस सूरत में भी तलाक वाकई हो जाएगी। तलाक को अपनी सिफत बनाए फिर तो तलाक नहीं होगी, लेकिन जुदाई और तहरीम के अंदर जुदाई आ जाएगी। तो कहते हैं वमन काल अली मरअतिही, और जिस शख्स ने अपनी बीवी से कहा आना मीन की तालिकुन, के मैं तेरी तरफ से तलाक वाला हूं, यानी तेरी तरफ से मुझे तलाक है, फल्ले सब इशय इन, तो ये कुछ भी नहीं है, यानी इसे कुछ नहीं होगा, वह इन नवा तलाकन, अगरचे खावन तलाक की भी नीयत कर ले फिर भी कुछ नहीं होगा, वलव काला आना मीन की बा इन, और अगर खावन ने यह कहा कि मैं तेरी तरफ से बाइन हूं जुदा हूं, और अलय की हराम उनके, या खावन ने यह कहा कि आना अलय की हराम उनके, मैं तुझ पर हराम हूं, यनवी तलाका, और खावन इसके जरिए तलाक की नीयत करता है, खावन क्या करता है इसके जरिए तलाक की नीयत करता है, क्योंकि बाइनुन ये किनाया है, और किनाये के लिए क्या जरूरी है, नीयत का होना जरूरी है, या हराम भाई ये भी क्या है, किनाया है, और इसके लिए भी नीयत चाहिए, तो कहते हैं यन वि तलाक, इसके जरिए खावन तलाक की नीयत करता है, फहिया तालिकुन, तो इस सूरत में वो औरत तलाक वाली हो जाएगी। वकाल शाफिई रहमहुल्लाहु यकउ तलाक फिल वजहिल अव्वली अज़न इज़ा नवा, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं यकउ तलाक फिल वजहिल अव्वली अज़न, के पहली सूरत में भी तलाक वाकई हो जाएगी, इज़ा नवा, जब खावंद ने नीयत की, पहली सूरत में भी तलाक वाकई हो जाएगी, खावन ने कहा आना मीन की तालिकुन, कि तेरी तरफ से मुझे तलाक है, और इसमें खावन कहते हैं तलाक की नीयत करेगा तो तलाक वाकई हो जाएगी। किसका मजहब चल रहा है, इमाम शाफई रहमहुल्लाह का, वो फरमाते हैं, और कहा इजा नवा, जब वो नीयत करेगा, भाई ये तो सरीह है, सरीह में तो नीयत की जरूरत नहीं होती, तो जवाब ये, चूंकि ये गैर मुतारफ है, लोगों में इस तरह कहना राइज नहीं है, लिहाजा इसलिए यहां नीयत भी करना जरूरी है। सरीह तो उसे कहते हैं ना जिसका माना जाहिर होता है, लेकिन यहां तो लोग इस तरह इस्तेमाल ही नहीं करते, लिहाजा यहां नीयत जरूरी होगी भाई। तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं यकउ तलाक फिल वजहिल अव्वली अज़न, की पहली सूरत में भी तलाक वाकई हो जाएगी, इदा नवा, जब खावन नियत करे, लिअन्न मिल्का निकाह मुश्तरकुम बैन ज़ौजैन, इसलिए क्योंकि मिलके निकाह जो है वो मुश्तरक है दोनों मियां बीवी में, दोनों मियां बीवी में मुश्तरक है। याद रखो, आपको बतलाएंगे, हमारे नजदीक मिलके निकाह खावंद को हासिल है, मिलके निकाह खावंद को हासिल है, और बीवी ममलूका के दर्जे में है, बीवी ममलूका के दर्जे में है, जबकि इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मिलके निकाह मियां बीवी दोनों को हासिल है, खावंद को भी मिलके निकाह हासिल है बीवी पर, और बीवी को भी खावंद पर मिलके निकाह हासिल है। चुनाचे वो फरमाते हैं कि आप देखते नहीं कि अगर कोई खावन जो है बीवी से सोहबत नहीं करता, एक शख्स ने मसलन उसकी एक बीवी थी, अब उसने दूसरा निकाह कर लिया, अब पहली को उसने बिल्कुल ही मुअल्लक छोड़ दिया है, उसके पास जाता ही नहीं या उसे सोहबत ही नहीं करता, तो बीवी को शरीयत ने हक दिया है, वो काजी के पास जाकर वती का मुतालबा कर सकती है कि मेरे खावन को हुक्म दिया जाए वो मेरे साथ सोहबत नहीं करता। तवज्जो है, तो देखो औरत काजी के पास जाकर वती का मुतालबा कर सकती है, इसी तरह खावन भी काजी के पास जाकर तमकीन का मुतालबा कर सकता है। याद रखो, वती करना यह खावन का फेल है, वती करना खावन का फेल है, और कुदरत देना यह औरत का फेल है, औरत खावन को वती पर कुदरत देती है, और इसको कहते हैं तमकीन। भाई मक्का ना युमक्किन, तमकीन का क्या माना, कुदरत देना। तो औरत जो है उसको शरीयत ने हक दिया है, अगर खावंद उसके साथ सोहबत नहीं करता, उसको वैसे ही छोड़ दिया है, तो वो काजी के पास जाकर मुतालबा बिलवती कर सकती है, वती का मुतालबा कर सकती है। और अगर इसके बराक्स मामला हुआ, एक खावंद है उसकी बीवी उसको सोहबत ही नहीं करने देती, तो फिर खावंद काजी के पास जाकर मुतालबा तमकीन कर सकता है कि काजी साहब मेरी इस बीवी को हुक्म दें कि ये मुझे अपने ऊपर कुदरत दे, मुझे सोहबत करने दे, ये मेरी बीवी है, मैंने इसको घर दिया है, मैं इसको कपड़े देता हूं और मैं इसको नफका देता हूं, तो लिहाजा इसको हुक्म दें। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि जैसे बीवी वती के मुतालबे की मालिक है, इसी तरह खावन भी तमकीन के मुतालबे का मालिक है, तो दोनों मालिक हैं, मिलके निकाह औरत को भी हासिल है, वो वती के मुतालबे की मालिक है, वो वती का मुतालबा कर सकती है, और नीज मिलके निकाह खावन को भी हासिल है, वो तमकीन के मुतालबे का मालिक है, वो तमकीन का मुतालबा कर सकता है। भाई तो मालूम हुआ मिलके निकाह दोनों में मुश्तरक है। हमारे नजदीक तो मिलके निकाह सिर्फ खावन को हासिल है, खावन मालिक के दर्जे में है, बीवी किसके दर्जे में, ममलूका के दर्जे में, लेकिन उनके नजदीक मिलके निकाह दोनों में मुश्तरक है, दोनों को हासिल है। तो कहते हैं लिअन्ना मिल्कन निकाह ही मुश्तरकुम बैन ज़ौजैन, इसलिए क्योंकि मिल्के निकाह जो है वो दोनों मियां बीवी के दरमियान मुश्तरक है। हत्ता मलकतिल मुतालबत बिल वती, यहां तक कि औरत जो है वती के मुतालबे की मालिक होती है। कमा यमलिकुहुल मुतालबत बित तमकीनी, जैसे कि खावन जो है वो तमकीन के मुतालबे का मालिक होता है। वह कदल हिल्लु मुश्तरकुम बैनहुमा, और इसी तरह हलाल होना भी दोनों में मुश्तरक है। तवज्जो है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मिलके निकाह भी दोनों में मुश्तरक है और नीस हिल्लत भी दोनों में मुश्तरक है। खावंद के लिए बीवी हलाल है तो बीवी के लिए खावंद हलाल है। तो कहते हैं वकदल हिल्लु मुश्तरकुम बैनहुमा, और इसी तरह हलाल होना भी दोनों के दरमियान मुश्तरक है। व तलाक वुज़अ इज़ालतिहिमा, और तलाक को वजा किया गया है इज़ालतिहिमा, इन दोनों को जायल करने के लिए। तलाक किस लिए वजा है, किस लिए मुकर्रर की गई है? इस मिलके निकाह और हिल्लत को खत्म करने के लिए। तलाक किस लिए वजा है? तवज्जो है, मिलके निकाह मियां बीवी दोनों को हासिल, इसी तरह दोनों एक दूसरे के लिए हलाल भी हैं। तो ये जो तलाक है इसको इन दोनों के इजाले के लिए वजा किया गया है, यानी तलाक की वजह से दोनों की मिलके निकाह भी खत्म होगी और दोनों की एक दूसरे के लिए हिल्लत भी खत्म होगी। तो कहते हैं वकदल हिल्लु मुश्तरकुम बैनहुमा, और इसी तरह हलाल होना भी दोनों के दरमियान मुश्तरक है। व तलाक वुज़अ इज़ालतिहिमा, और तलाक जो है इसको वजा किया गया है इन दोनों के इजाले के लिए, यानी इन दोनों को जायल करने के लिए। फयसिहु मुज़ाफ़न इलैहि कमा यसिहु मुज़ाफ़न इलैहा, लिहाजा तलाक सही होगी मुज़ाफ़न इलैहि, इस हाल में कि इसकी निस्बत की जाए मर्द की तरफ। कमा यसिहु मुज़ाफ़न इलैहि, जैसे कि औरत की तरफ तलाक की इजाफत सही है। तवज्जो है नहीं? तवज्जो मेरा ख्याल नहीं तवज्जो। भाई तलाक जो है वो इजाले के लिए है, और किस चीज का इजाला करती है? मिलके निकाह का और हिल्लत का, और मिलके निकाह भी दोनों के दरमियान मुश्तरक मियां बीवी में, और हिल्लत भी दोनों में मुश्तरक है। तो जब ये दोनों चीजें दोनों में मुश्तरक हैं तो तलाक इसी को खत्म करने के लिए आती है, लिहाजा तलाक की निस्बत खावन की तरफ भी की जाए तो भी सही, बीवी की तरफ की जाए तो भी सही, क्योंकि दोनों के लिए मिलके निकाह भी थी और हिल्लत भी थी। बीवी की तरफ तलाक की निस्बत करता है तो उससे भी मिलके निकाह और हिल्लत खत्म होगी उसकी, और खावन अपनी तरफ निस्बत करता है तो इस सूरत में बीवी की मिलके निकाह और हिल्लत क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो दोनों निस्बतें सही हैं, बीवी की तरफ भी तलाक की निस्बत सही और खावन की तरफ भी तलाक की निस्बत सही है। तो कहते हैं फयसिहु मुज़ाफ़न इलैहि कमा यसिहु मुज़ाफ़न इलैहा, तो तलाक सही है इस हाल में कि उसकी इजाफत की जाए खावंद की तरफ। कमा यसिहु मुज़ाफ़न इलैहा, जैसे कि तलाक सही है इस हाल में कि उसकी इजाफत की जाए बीवी की तरफ। कमा फिल इबानति व तहरीमी, जैसे जुदाई और तहरीम के अंदर है। जुदाई और तहरीम में तो आपने भी बतला दिया, जैसे मतन में आपने हमें बताया, इबानत यानी जुदाई की निस्बत खावन चाहे बीवी की तरफ करे चाहे अपनी तरफ करे, दोनों सूरतों में जुदाई आ जाती है। खावन बीवी से कहता है तू मुझसे जुदा है, या खावन बीवी को कहता है मैं तुझसे जुदा हूं, दोनों सूरतों में जुदाई आ जाएगी। या इसी तरह तहरीम की निस्बत खावन करता है चाहे बीवी की तरफ करे चाहे अपनी तरफ करे, दोनों सूरतों में जुदाई आ जाती है। मसलन खावन बीवी से कहता है कि तू मुझ पर हराम है, तब भी जुदाई आ जाएगी, और या खावंद बीवी से कहता है मैं तुझ पर हराम हूं, तब भी जुदाई आ जाएगी। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जैसे इबानत और तहरीम की निस्बत दोनों की तरफ हो सकती है, इसी तरह तलाक की निस्बत भी मियां और बीवी दोनों की तरफ सही है और इसे तलाक वाकई हो जाएगी। आगे देखिए वलना, और हमारी दलील यह है कि अन्न तलाक अली इजालतिल कैदी व हुवा फीहा दून अज़्ज़ौजी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने तो क्या फरमाया था, तलाक किस लिए है? ये तलाक है मिलके निकाह और हिल्लत के इजाले के लिए। तलाक किस लिए है? मिलके निकाह और हिल्लत के इजाले के लिए, और मिलके निकाह भी दोनों को होती है और हिल्लत भी दोनों के लिए होती है, लिहाजा दोनों की तरफ निस्बत सही है तलाक की। हम कहते हैं नहीं, तलाक मिलके निकाह और हिल्लत के इजाले का नाम नहीं है, बल्कि तलाक नाम है इजाला कैद का। तलाक किस चीज का नाम है? इजाला कैद कि कैद को खत्म करना किसी पर से, और कैद बीवी में होती है, खावंद में कैद नहीं होती। बीवी में क्या कैद है? बीवी आगे कोई और निकाह नहीं कर सकती, खावंद तो और निकाह कर सकता है। नीज बीवी खावंद की इजाजत के बगैर घर से नहीं निकल सकती, खावंद तो उसकी इजाजत के बगैर निकल सकता है। तो कैद किस में पाई गई? बीवी के अंदर। किसके अंदर? बीवी के अंदर कैद पाई जा रही है, और तलाक इजाला कैद का नाम है। तो जब तलाक इजाला कैद का नाम है तो कैद तो बीवी के अंदर पाई जा रही है, लिहाजा बीवी ही की तरफ निस्बत की जा सकती है तलाक की, फिर ही वाके होगी। खावंद की तरफ निस्बत की जाए तो फिर वाके नहीं होगी। बात समझ में आ गई। वलना हमारी दलील यह है कि अन्ना तलाक अल इजालतिल कैदी, के तलाक जो है वो इजाला कैद के लिए है, यानी कैद को जायल करने के लिए है। वह हुआ फीहा दूना ज़ौजी, और यह कैद जो है वो तो औरत में होती है, दूना ज़ौजी ना के खावंद में। अल्लाह तारा के आप देखते नहीं अन्ना हियल ममनूअतु अनि तज़व्वुजी बिज़ौजिन आखर वल खुरूजी, कि ये औरत जो है हियल ममनूअतु, ये मना की गई है अनि तज़व्वुजी बिज़ौजिन आखर, किसी दूसरे खावंद से निकाह से। जब एक शख्स से एक औरत का निकाह हो चुका है तो औरत किसी और से निकाह नहीं कर सकती। वल खुरूज, और इसी तरह औरत जो है वो मना की गई है किससे? खुरूज से, घर से निकलने से। तवज्जो है। तो कहते हैं अल्लाह तारा कि आप देखते नहीं है अन्नहा हियल ममनूअतु अनि तज़व्वुजी बिज़ौजिन आखरा वल खुरूजी, कि औरत जो है इसी को मना किया गया है किसी दूसरे खावन से निकाह करने से, वल खुरूजी और निकलने से। वलव कानल इजालतिल मिल्क फहुवा अलैहा, अगर इमाम शाफी रहमतुल्लाह की बात मान लें, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की बात, उन्होंने क्या कहा था कि तलाक किस चीज का नाम है? इजाला मिलके निकाह और इजाला हिल्लत का नाम है। अगर आपकी बात हम मान लें कि तलाक इजाला मिल्कियत का नाम है, किसका नाम है? इजाला मिल्कियत का नाम है। अगर हम आपकी यह बात मान लें, फिर भी मिल्कियत औरत के ऊपर खावंद की है, खावंद पर बीवी की मिल्कियत नहीं है। चुनांचे इसीलिए खावंद को नाकिह कहते हैं। खावंद को क्या कहते हैं? नाकिह, निकाह करने वाला, और औरत को मनकूहा कहते हैं, जिससे निकाह किया गया है। तो मालूम हुआ औरत मनकूहा है, ममलूका है, और खावंद नाकिह है, मालिक है। तो लिहाजा अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि तलाक इजाला मिल्कियत का नाम है, तो मिल्कियत भी तो औरत में है, इसीलिए तो उसको मनकूहा कहते हैं, वरना तो उसको भी नाकिहा कहना चाहिए था। तवज्जो है। लेकिन उस पर इसमें मफूल का लफ्ज बोला जा रहा है, मालूम हो वो ममलूका है, जैसे मालिक और ममलूक। तो देखो जो ममलूक है उस पर इसमें मफूल का लफ्ज बोला जा रहा है ममलूक, इसी तरह बीवी पर भी मनकूहा, इसमें मफूल का लफ्ज बोला जा रहा है। मालूम मिल्कियत किसको हासिल है? खावंद को हासिल है। तवज्जो है। तो कहते हैं वलव कान अली इजालतिल मिल्की, और अगर यह तलाक इजाला मिल्कियत के लिए होती, फहुआ अलैहा, तो मिल्कियत वो भी खावंद की बीवी पर है। लिअन्नहा ममलूकतुन, इसलिए क्योंकि औरत जो है वह ममलूका है। वह ज़ौजु मालिकुन, और खावंद मालिक है। वलिहादा सुमियत मनकूहतन, और इसीलिए औरत को मनकूहा कहते हैं। तो जब खावंद मालिक है और बीवी ममलूका है, तो अगर तलाक इजाला मिल्क का नाम है तो मिल्कियत तो औरत के ऊपर है, लिहाजा इजाला मिल्कियत की निस्बत भी किसकी तरफ होनी चाहिए? औरत ही की तरफ होनी चाहिए, खावंद की तरफ नहीं भाई। तो जब औरत पर मिल्कियत है तो इजाला मिल्कियत भी औरत पर से होगा। मिल्कियत किस पर है? औरत पर है, तो इजाला मिल्कियत भी औरत पर से होगा, औरत पर से मिल्कियत खत्म होगी। लिहाजा तलाक यानी इजाला मिल्कियत की निस्बत भी औरत की तरफ ही दुरुस्त होगी। खावंद पर मिल्कियत नहीं है तो इजाला मिल्कियत की निस्बत भी खावंद की तरफ सहीह नहीं है भाई। बेखिलाफिल इबानती, हां इबानत के लफ्ज, तवज्जो है। खावंद बीवी से कहता है तू मुझसे जुदा है, या खावंद कहता है मैं तुझसे जुदा हूं, दोनों सूरतों में जुदाई आ गई। इसी तरह तहरीम के अंदर भी है, खावंद बीवी से कहता है तू मुझ पर हराम है, या अपनी तरफ हुरमत की निस्बत करता है मैं तुझ पर हराम हूं, तो फिर दोनों सूरतों में जुदाई आ जाएगी। वजह यह कि यहां दोनों इसमें एक चीज में शरीक थे, तो उसमें दोनों की तरफ निस्बत हो सकती है। वजह देखो, साहिब हिदायत जिक्र फरमा रहे हैं, कहते हैं बिखिलाफ इल इबानती, बखिलाफ इबानत के यानी जुदाई के लि अन्नहा लि इजालतिल वुसलती, वुसलतुन स्वाद के साथ है भाई, वुसलतुन जोड़ को कहते हैं जोड़। और देखो मियां बीवी के दरमियान निकाह है, ये जोड़ है इन दोनों के दरमियान। तो ये जो निकाह है ये किसका नाम है? वुसलतुन जोड़ का नाम है। और इबानत किसे कहते हैं? इबानत यानी जुदाई करना, यानी इस जोड़ को खत्म कर देना। और जोड़ मियां बीवी दोनों के दरमियान था, जोड़ दोनों के दरमियान था, और इसी जोड़ को खत्म करने का नाम इबानत है। लिहाजा इबानत की निस्बत औरत की तरफ भी की जा सकती है और मर्द की तरफ भी, क्योंकि दोनों इसमें शरीक थे। इस जोड़ में दोनों क्या थे? शरीक थे। दोनों के दरमियान ये निकाह वाला जोड़ था। और इबानत का क्या माना होता है? इस जोड़ को तोड़ना, इस जोड़ को तोड़ना और खत्म करना। तो जब दोनों एक जोड़ में शरीक हैं तो इबानत की निस्बत मर्द और औरत दोनों की तरफ की जा सकती है
जी।
और इसी तरह हुर्मत जो है, हुर्मत वो नाम है हिल्लत को खत्म करना। और हिल्लत दोनों के अंदर मौजूद थी, खावन बीवी के लिए हलाल था तो बीवी खावन के लिए हलाल थी। और इस हिल्लत को खत्म करने का नाम तहरीम है, हराम करना। तो यहां भी चूंकि हिल्लत दोनों में थी तो तहरीम की निस्बत भी दोनों की तरफ की जा सकती है। खावन यह भी कह सकता है तू मुझ पर हराम है, और खावन यह भी कह सकता है मैं तुझ पर हराम हूं। माल दोनों का एक ही होगा, जुदाई आ जाएगी। तो कहते हैं बिखिलाफ इल इबानती, बखिलाफ जुदाई के लिए अन्नहा लि इजालतिल वुसलती, इसलिए क्योंकि इबानत जो है वो जोड़ को खत्म करने के लिए है। वही मुश्तरकतुन, और ये जोड़ तो दोनों के दरमियान मुश्तरक है। वह बिखिलाफ इत तहरीमी, और बखिलाफ तहरीम के लि अन्नहु लि इजालतिल हिल्ल, क्योंकि तहरीम जो है वो हिल्लत को जायल करने के लिए है। वह हुआ मुश्तरकुन, और ये हिल्लत भी दोनों के अंदर मुश्तरक है। फसहत इजाफतुहुमा इलैहिमा, लिहाजा इन दोनों की निस्बत दोनों की तरफ सही है। ये तहरीम और इबानत की निस्बत दोनों की तरफ सही है। लेकिन वला तस्सिहु इजाफतु तलाक इल्ला इलैहा, लेकिन तलाक की निस्बत जो है सिर्फ औरत ही की तरफ सही है भाई, मर्द की तरफ सही नहीं। क्योंकि तलाक व इजाला कैद का नाम है, और कैद सिर्फ औरत में होती है खावंद में नहीं। जबकि इबानत वो जोड़ को तोड़ने का नाम है, और जोड़ दोनों के दरमियान है, लिहाजा इसलिए उसमें दोनों शरीक हैं तो वहां दोनों की तरफ निस्बत हो सकती है। इसी तरह हुर्मत जो है वो हिल्लत को खत्म करने का नाम है, और हिल्लत में भी दोनों मुश्तरक हैं भाई। तो लिहाजा इबानत और तहरीम की निस्बत तो दोनों की तरफ हो सकती है, लेकिन तलाक की निस्बत सिर्फ औरत की तरफ ही हो सकती है। बात समझ में आ गई? चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।